नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा, उनके पूर्वज केवल प्रवासी नहीं थे बल्कि एक शाश्वत सभ्यता के संदेशवाहक थे। टीआरपी बाजार को लोकतांत्रिक और आधुनिक बनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा। दिल्ली सरकार ने अवधि पार कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं देने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया। कहा, ऐसे वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार विशेष रूप से आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाएगी। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को पारित किया और भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने क्रोएशिया में ग्रैंड चेस टूर 2025 के तीसरे चरण में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर एकल बढ़त हासिल की। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय की यात्रा साहस से भरी है। आज सुबह त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके पूर्वज केवल प्रवासी नहीं थे बल्कि एक शाश्वत सभ्यता के संदेशवाहक थे।
द जर्नी ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन त्रिनिदाद एंड टोबैगो इज अबाउट करेज। द सर्कमस्टेंसेस Your ancestors' face could have broken even the strongest spirits, but they faced hardships with hope. They met problems with persistence. They left the Ganga and Yamuna behind, but carried the Ramayana in their hearts.
Pradhanmantri ne Trinidad aur Tobago ke nagriko ko Ram Nagari Ayodhya aane ka bhi nimantran diya.
The holy city of Prabhu Sri Ram is so beautiful that its glory is spread across the world. I'm sure you all welcome the return of Ram Lala to Ayodhya after 500 years with great joy.
इससे पहले प्रधानमंत्री कल रात अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। हवाई अड्डे पर त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसन ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ श्री मोदी का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन में अविस्मरणीय स्वागत के लिए स्थानीय भारतीय समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं पोर्ट ऑफ स्पेन में मौजूद हमारी संवाददाता साक्षी सिंह के पास। साक्षी, पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन काफी उत्साहजनक देखा गया, तो किन महत्वपूर्ण बातों पर वहां पर उन्होंने प्रकाश डाला?
एक बहुत महत्वपूर्ण बात जब हम संबोधन की करते हैं तो वो ये है कि संबोधन से पहले जब प्रधानमंत्री त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसन ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को यहाँ का सर्वोच्च सम्मान जो होता है ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया, उसकी घोषणा करी, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है भारतवासियों के लिए और यहाँ के अप्रवासी भारतीयों के लिए, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जो संबोधन था
जी
वो उसके था। उन्होंने बार बार इस बात पे जोर डाला कि यहाँ के जो अप्रवासी भारतीय हैं वो राष्ट्रदूत हैं, वो भारत की यहाँ की जो वैल्यूज होती हैं, यहाँ का जो कल्चर है उसको अलग अलग जगह पहुंचा रहे हैं। और इसी के सम्मान में उन्होंने जो ओसीआई की घोषणा करी वो यहाँ के लोगों ने बहुत ही उसको बहुत प्रोत्साहित हुए हैं। उन्होंने ये घोषणा करी कि जो यहाँ पे गिरमिटिया समाज की छठी जनरेशन है उनको भी ओसीआई कार्ड दिया जाएगा।
जी साक्षी, और प्रधानमंत्री का जो दूसरा चरण है वो अर्जेंटीना जाना होगा, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है?
देखिए, अर्जेंटीना या फिर आप बात करें त्रिनिदाद टोबैगो अर्जेंटीना, ये जो सारे देश हैं जब हम भारत का इनके संबंध में बात करते हैं तो ये ग्लोबल साउथ में जो भारत का प्रतिनिधित्व ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करना है, भारत को एक उसको जो भारत का एक रोल है इन लोगों का प्रतिनिधित्व करना वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इन दोनों देशों में हम रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेड हो गया, और रेल अर्थ मेटल्स होते हैं, इनकी जो ये विशेषता ये है बिंदु जिनपे वार्ता या द्विपक्षीय वार्ता होने की उम्मीद करी जाती है।
जी जी साक्षी, इसके अलावा जो है अर्जेंटीना भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार भी है और G20 में इसका निकट सहयोगी भी है, और पिछले 57 वर्षों में अर्जेंटीना में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
देखिए अर्जेंटीना के विषय में तो मैं इतना नहीं बता सकती क्योंकि अभी भी त्रिनिदाद टोबैगो का दूसरा चरण है वो अभी बचा है, जिसमें उम्मीद करी जा रही है कि त्रिनिदाद टोबैगो और
जी
भारत के बीच में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीना कार्लो कांगलू,
जी
उनके साथ जो वार्ता होने वाली है उसमें ट्रेड, बहुत सारे MOUs,
जी
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब के विषय पे लेकर बात हो सकती है। और
जी
प्रधानमंत्री जो यहाँ के संसद का एक ज्वाइंट सत्र भी कल संबोधित
जी
करेंगे।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ताज़ा जानकारी देने के लिए, आगे भी हम आपसे बने रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए 2014 में जारी नीति दिशा निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित मसौदे में मीडिया घरानों के लिए कुछ प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को भी हटा दिया गया है ताकि देश में टेलीविजन दर्शकों की माप प्रणाली को लोकतांत्रिक और आधुनिक बनाया जा सके। वर्तमान में टीवी रेटिंग प्रदान करने वाली एकमात्र एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य टीवी रेटिंग के क्षेत्र में कई एजेंसियों के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। मौजूदा नियम 2014 के हैं जो अब पुराने हो चुके हैं। भारत में लगभग 23 करोड़ घरों में टेलीविजन है, लेकिन केवल 58,000 घरों से डाटा लिया जाता है। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से आयु पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं देने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस संबंध में आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के पर्यावरण को स्वच्छ करेगी और यहां के वाहनों को जब्त नहीं होने देगी। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आयोग को अवगत कराया है कि जो स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाए गए हैं वो एक मजबूत प्रणाली नहीं है और उनके साथ अभी भी कई चुनौतियां हैं।
उनको हमने बताया कि जो एएमपीआर कैमरे लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है, अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये स्पीकर्स भी मैनुफलेटेड हैं। एंड ऑफ वाइट लाइफल जो है इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं इनमें से भी जो जिनपे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों में झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे, इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में 5,000 से अधिक मोबाइल टॉवर लगाने की योजना बना रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रायपुर में कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए गए।
वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति को नई गति देने पर बल दिया है। राज्य सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभागों में नए मोबाइल टावर लगाने तथा फाइबर नेटवर्क लाइन बिछाने जैसे कार्यों में तेजी लाई जाए। आने वाले समय में राज्य में समय सीमा के भीतर चरणबद्ध रूप से 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई डिस्ट्रिक्ट 2.0 के माध्यम से वर्तमान में विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करते हुए 250 अन्य ऑफलाइन सेवाओं को भी ऑनलाइन सेवाओं में तब्दील किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज झारखंड के रांची में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन करेंगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ये केंद्र विशेष रूप से झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर केंद्रित कई प्रमुख पहलों के प्रशिक्षण और अनुसंधान की जरूरतों को पूरा करेंगे।
1966 से ये संस्थान चल रही है। निश्चित रूप से ये विशेषकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन चार राज्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में ये रहेगा। सावित्रीबाई फुले जी को हम सभी जानते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी श्रद्धांजलि भी होगी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्चित व्यापक कर और व्यय विधेयक बृहस्पतिवार देर रात पास हो गया। कैपिटल हिल में बीती रात हंगामेदार सत्र के दौरान प्रतिनिधि सभा ने 218 से 214 मतों से विधेयक पारित कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपब्लिकन के नियंत्रण वाली कांग्रेस को इस बिल का अंतिम रूप भेजने के लिए 4 जुलाई तक का समय दिया था, जिसे उन्होंने कानून में हस्ताक्षर करने के लिए बिग ब्यूटीफुल बिल कहकर संबोधित किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारतीय डाक पारंपरिक संदेश वितरण प्रणाली से बहुत आगे निकल गया है और ये अब देश भर में 1,64,000 से अधिक सेवा केंद्रों के साथ देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क संचालित करता है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि डाक विभाग शीघ्र ही डिजी पिन शुरू करेगा, जो एक जियो कोडेड एंट्रेंस सिस्टम है। ये देश के सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी डाक पहुंचाने को सक्षम करेगा।
आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है, तो ये डाक विभाग का एक अंग बने और इसलिए पहली बार डाक विभाग में एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हमने रखा है। हर डाकिये के हाथ में जो पहले चिट्ठियों का बंडल होता था, अब उसे एक हैंडहेल्ड पोर्टेबल मोबाइल के आधार पर हम लोग ने दिया है। तो एक CTO हमने पोजीशन की है और हर एक वर्टिकल के साथ एक वाइस CTO, क्योंकि उस IT 2.0 सॉफ्टवेयर के आधार पे ही इसे एक लॉजिस्टिकल पावर हाउस हम लोग बनाना चाहते हैं।
ये विशेष पॉडकास्ट आज शाम आकाशवाणी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर प्रसारित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। उधर हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी तेज बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में जिला सिरमौर के पच्छाद में सर्वाधिक 133 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जिला हमीरपुर के बड़सर में 92 मिलीमीटर, राजधानी शिमला के जुब्बड़हट्टी में 59, जबकि जिला ऊना में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस बीच प्रदेश में 246 सड़कों पर यातायात बंद है, जबकि 404 ट्रांसफार्मर और 784 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं, जिससे लोगों को बिजली और पानी के संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में वर्षा जनित घटनाओं में अब तक कुल 69 लोगों की मृत्यु हुई है, 110 लोग घायल हुए हैं, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
खेलों में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने कल ग्रैंड चेस टूर सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्ड्स क्रोएशिया के रैपिड चरण के छठे दौर में विश्व नंबर एक और 5 बार के चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। गुकेश ने इससे पहले नॉर्वे शतरंज 2025 में कार्लसन को हराया था। लगातार 5वीं जीत के साथ ग्रैंड मास्टर गुकेश टूर्नामेंट में 10 अंक हासिल कर एकल बढ़त बना चुके हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद फरहत। शुभमन गिल के इंग्लैंड में टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने की खबर आज सभी अखबारों ने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित की है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, शुभमन गिल ने लगाई डबल सेंचुरी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, पहले भारतीय कप्तान बने गिल। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, दूसरे टेस्ट की शुभ शुरुआत, गिल का दोहरा शतक। हथियारों की खरीद को मंजूरी, सुखोई को अपग्रेड करने के लिए करार होगा, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, भारतीय वायुसेना को मिलेगी मजबूती। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए चुने जाने की खबर राजस्थान पत्रिका ने प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में चमकेगा दीपिका का सितारा, प्रतिष्ठित सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। खौफ न चिंता, पहले दिन 12,000 शिव भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, शिवमय हुए जम्मू, बालतल और पहलगाम के आधार शिविर, दैनिक जागरण की सुर्खी है।
धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा, उनके पूर्वज केवल प्रवासी नहीं थे बल्कि एक शाश्वत सभ्यता के संदेशवाहक थे। टीआरपी बाजार को लोकतांत्रिक और आधुनिक बनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा। दिल्ली सरकार ने अवधि पार कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं देने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया। कहा, ऐसे वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार विशेष रूप से आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाएगी। और अमरीकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को पारित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।